पहला पत्रस की पत्री अध्याय एक पद 22 से लेकर के दो अध्याय के 10 पद तक हम आपका ध्यान इस पर लाना चाहेंगे। कृपया करके आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, मैं आप सबके लिए इसको पढ़ रहा हूँ। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश हैं और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही वह वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया है। इसलिए सब प्रकार का वैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर कर नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललाहित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है, तुम भी जीवित पत्थरों के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो, जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, देखो मैं सियोन में एक चुना हुआ पत्थर अर्थात कोने का एक बहुमूल्य पत्थर स्थापित करता हूँ, और जो उस पर विश्वास करता है वह कभी निराश ना होगा। अतः तुम विश्वासियों के लिए यह पत्थर बहुमूल्य है, परंतु अविश्वासियों के लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया और ठेस लगने का पत्थर तथा ठोकर खाने की चट्टान, क्योंकि वचन का पालन ना करके वे ठोकर खाते हैं, इसी विनाश के लिए वे नियुक्त भी किए गए हैं। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, याजके याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे उसके महान गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। एक समय तुम प्रजा ना थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया ना हुई थी, पर अब दया हुई है। तो जैसे कि पहला पत्रस की पत्री हम यहाँ पर आज पढ़े हैं और पिछले दो खंडों को हमने देखा था, जब संक्षिप्त में इसके परिचय के विषय में जाते हैं तो ये पत्री का लिखने वाला पत्रस है, और ये उन विश्वासियों को लिख रहा है जिसका विवरण आप एक अध्याय के एक पद में अगर पाएंगे तो गलतिया, कंफूतिकिया, एशिया और बुथुनिया में तितर बितर के जो विश्वासी लोग रह रहे हैं उनको ये पत्र लिखा गया है। और ये लोग उस समय, जब आप प्रेरितों काम 8 अध्याय के एक पद में पढ़ते हैं कि जब स्तपनुस का पथराव हुआ था उस समय कलीसिया पर घोर अत्याचार हुआ था, जिस कारण ये विश्वासी लोग तितर बितर करके दूर दूर स्थानों पर जाकर रह रहे थे, और उनको विश्वास में दृढ़ करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए पत्रस ये पत्री को लिख रहे हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि प्रिय भाई और बहनों, तुम जो मसीह पर विश्वास करते हो, तुम जो यीशु के पीछे चलते हो, एक बात को याद दिलाते हैं कि विश्वासियों के पास एक दुखों के मध्य में उनके पास एक जीवित आशा है। ये पत्रस इस पत्र को लिखने के द्वारा उन तितर बितर रहने वाले लोगों को लिखते हैं और उनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि तुम परेशान न हो, तुम्हारे पर दुख, सताव, कठिनाई जरूर आएंगे, आ रहे हैं, लेकिन इनके मध्य में तुम्हारे पास एक परमेश्वर की दी हुई आशा है। इस बात को हमने देखा था कि पहले खंड में एक अध्याय के एक पद से लेकर 9 पद के मध्य में देखा था, और ये बात और याद दिलाते हैं कि विश्वासियों के पास एक भविष्य में ऐसी विरासत मिलने वाली है जो परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को देगा वो। और इस बात को पत्रस याद दिलाते हैं कि विश्वास में विश्वासी लोग दृढ़ रहें, और वो जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए विरासत अर्थात अनंत जीवन रखा है उसको प्राप्त करें और उसको किसी प्रकार से निरुत्साहित ना हो, उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और ये बात हमको और आपको ध्यान रखना है कि हम विश्वासियों के पास एक निश्चित भविष्य में विरासत है जो परमेश्वर की ओर से हमें दान में मिली है। ये विरासत हमने अपने कामों के द्वारा, हमने अपने किसी प्रयासों के द्वारा नहीं, लेकिन ये यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये हमको मिली है। और इसके अंतर्गत हमने तीन मुख्य बातों को देखा था कि एक मसीही कि विरासत को कभी कोई विरोधी शक्तियां नाश नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात देखा था कि ये जो विरासत है, जो परमेश्वर की दी हुई विरासत है, ये संसार में जो ऐसे फल हम खाते पके हुए फल के समान नहीं है कि वो कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगी। ये विरासत हमेशा हमेशा के लिए जैसे थी वैसे है, वैसे रहेगी, ये हमेशा हमेशा के लिए ऐसे रहेगी और ये विरासत कभी मुरझाएगी नहीं। इस बात को हमने पिछले खंडों में देखा था और जब एक अध्याय के 10 पद से 21 पद में देख रहे थे तो हमने एक मुख्य बात देखी थी कि हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर के पास ये एक योजना है, इसलिए हम अपना जीवन परमेश्वर के भय में जिए। उसके अंतर्गत तीन मुख्य बातें देखी थी कि एक विश्वासी अपनी पूरी आशा परमेश्वर पर रखता है, जो 1 अध्याय के 13 पद में देखा था। दूसरी बात देखी थी कि एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ता जाएगा, ये 14 पद से लेकर के 16 पद के बीच में देखा था। और तीसरी बात, एक विश्वासी अपना जीवन परमेश्वर के भय में व्यतीत करेगा क्योंकि परमेश्वर सबका न्याय करने वाला है और न्याय करेगा, ये बात 17 से 21 पद के मध्य में देखी थी। प्रिय भाई बहनों, आज हमको और आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर ने हमको और आपको आशा दी है, इस आशा के प्रति हमको सचेत रहना है और जो जिस पवित्रता में हम बढ़ रहे हैं, जिसकी हम खोज में लगे हुए हैं दिन प्रतिदिन, इस पवित्रता के विषय में भी हमको आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, और हमको परमेश्वर के न्याय के प्रति सचेत रहना है क्योंकि परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है हम सबका न्याय करने के लिए। तो ये बातें हम अपने आप को याद दिलाते रहे। और जो आज का खंड जो आपके सामने, पहला पत्रस 1 अध्याय 22 पद से लेकर के 2 अध्याय के 10 पद जो हमने पढ़ा है, इस पर आपका ध्यान लाना चाहेंगे। इस खंड का जो मुख्य विषय है, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने नया जन्म प्रदान किया है ताकि हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिए। आज के जो मुख्य स्थल का जो मुख्य बात है, जो मुख्य विषय है, हम कैसे अपना जीवन परमेश्वर के लिए जी सकते हैं, इस मुख्य बात के अंतर्गत 4 मुख्य बिंदु हैं जिसको हम ध्यान देंगे। हर एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों से निष्कपट हृदय से प्रेम करने के द्वारा या प्रेम करेगा, 22 पद से लेकर के 25 पद में है, 1 अध्याय के 22 पद से लेकर के 25 पद में। दूसरी बात है, हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन एवं विश्वासियों से संगति के लिए ललाहित रहेगा, जो 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के 3 पद में पाते हैं। और तीसरी बात है, हर एक विश्वासी यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी सकता है, 2 अध्याय के 4 पद से लेकर के 8 पद के मध्य में हम पाते हैं। चौथी बात है, हर एक विश्वासियों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया है ताकि उसके महान गुणों को प्रकट करें, ये 2 अध्याय के 9 पद से लेकर के 10 पद के मध्य में पाते हैं। जैसे कि यहां पर 22 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन से एक दूसरे से प्रेम करो। हम कैसे एक दूसरे से कलीसिया में प्रेम कर सकते हैं, हम कैसे अपनी कलीसिया में विश्वासी भाइयों से प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि पत्रस यहां पर इस बात को याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हो, तुम जो परमेश्वर के प्रेम को पहचाना है, तुम जो उसके प्रेम को प्रेम में बढ़ रहे हो, तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करो। कहते हैं मसीही लोग सत्य का पालन करने के द्वारा शुद्ध होते हैं, अर्थात मसीह के वचन को मानने के द्वारा वे शुद्ध किए जाते हैं। मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन ही हमारा एक आधार है, वचन को पालन करने के द्वारा, वचन को मानने के ही द्वारा हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बहुत कठिन होगा कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। क्योंकि जब वचन को पढ़ते हैं, जब वचन का पालन करते हैं, वचन में अपना मन लगाते हैं, तब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे कैसा प्रेम किया है। जब इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमसे और आपसे इतना महान प्रेम किया है, वो परमेश्वर का प्रेम हमको और आपको प्रेरित करता है कि हम कलीसिया में दूसरे भाई बहनों के साथ प्रेम करें। और कैसा प्रेम करें? कहता निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है। हम प्रेम करें निष्कपट। यदि हम उसका वचन का पालन नहीं करते हैं तो उसका वचन हमें शुद्ध नहीं करेगा, और यदि हम उसका वचन का पालन करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, तो उसका वचन ही है जो परमेश्वर की शुद्धता में, परमेश्वर की पवित्रता में हमको और आपको बढ़ाएगा, और हम इस बात के लिए प्रेरित होंगे कि हम कलीसिया में अपने भाई बहनों से प्रेम करें। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13:34 में योहन्ना लिखते हैं, कहते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह प्रेम का एक उदाहरण हमारे और आपके लिए स्वयं रखा है कि हमको किस प्रकार से प्रेम एक दूसरे से करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे और आपसे निस्वार्थ प्रेम किया, और उसने ऐसा प्रेम किया कि वो हमारे लिए अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके हमारे लिए मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया, और हमारे और आपके पापों के बदले वो क्रूस पे मर गया। उसने कोई और आशा नहीं की थी कि हमसे वो प्रेम करेगा तो हम उसके बदले में कुछ देंगे उसको। परमेश्वर को हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमको दिया है सब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में होकर दिया है। ये एक हमारे और आपके लिए उदाहरण रखा है कि ऐसा निस्वार्थ उसने प्रेम हमसे और आपसे किया है कि हम उसके प्रेम को देख करके हम उसके प्रेम के लिए प्रेरित हों और हम आपस में एक दूसरे से प्रेम करें। हमें अपने भाई और बहनों से सच्चाई के साथ प्रेम करना है। कई बार हम प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन अगर समाज की तरफ देखें, संसार की तरफ देखें, तो कई बातों में ऐसा हमारा स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको बताना चाहते हैं, वो खुद हमसे ऐसा प्रेम किया है, उसने खुद हमारे लिए ऐसा कार्य किया है, वो हमारा और आपका उदाहरण है, एक आदर्श है कि हम जैसे परमेश्वर ने हमको हृदय से प्रेम किया और हृदय की गहराई से हमको और आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, और हमें भी अपने भाई बहनों से निस्वार्थ भावना से प्रेम करना है। ये सब क्यों करना है? क्योंकि मसीह ने हमसे इसी रीति से प्रेम किया, इसलिए हमें भी अपने भाइयों से उसी प्रकार या उसी तरह प्रेम करना है। हम सब विश्वासी लोग अपने स्वर्गीय पिता की संतान हैं। जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी हम संतान हैं। यदि हम अपना स्वाभाविक भाई और बहन से प्रेम करते हैं, जो संसार में हमारे परिवार में 2-3-4 भाई बहन जो होते हैं, हम स्वाभाविक है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो संबंध हमारा कुछ समय के लिए है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए, लेकिन हम उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, हमको ये बात को सोचना है कि जब हम उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता की संतान हैं, तो हमें इस कलीसिया में, इस परिवार में जो हमारे आत्मिक भाई बहन हैं, उनसे क्यों ना उससे अधिक हमको प्रेम करना है, हमें अत्यधिक प्रेम करना है। और परमेश्वर का प्रेम ही हमें इस बात के लिए विवश करता है कि हमको आपस में प्रेम करना है, क्योंकि जब हम कलीसिया में सदस्यता लेते हैं, हम कलीसिया में जब वाचा बांधते हैं, तो हम एक दूसरे को भाई और बहन करके स्वीकार करते हैं। हमको और आपको अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में सोचना है कि हम सिर्फ ऐसे तो नहीं हम कलीसिया के सामने कहते हैं, हाँ ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं, मैं कलीसिया में स्वीकार करता हूं, लेकिन अगर वास्तव में आपने परमेश्वर के वचन में इस वाचा को बांधा है, तो हमको और आपको ध्यान देना है कि हम परमेश्वर की दया में होकर के कलीसिया में हमें एक दूसरे के साथ ऐसा प्रेम करना है जैसा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जैसा मसीह ने स्वयं हमसे किया है। क्योंकि हम केवल शुद्ध होने के लिए ही नहीं, बल्कि हमने और आपने नया जन्म लिया है। परमेश्वर ने हमको और आपको नया जन्म दिया है। क्यों? क्योंकि हमको और आपको नया जन्म इसलिए दिया है कि हम जीवन की नई चाल को चलें, जब एक दिन हम संसार में थे, जब हम एक दिन प्रभु को नहीं जानते थे, तो हम सब संसार की भांति चलते थे। लेकिन जिस दिन हमने और आपने प्रभु को जान लिया, परमेश्वर ने हमको और आपको नया जन्म दिया, और ये नया जन्म हमको इसलिए दिया है कि हम कलीसिया में अपने भाई बहनों से एक नई रीति से प्रेम करें, और ये प्रेम एक मिसाल बन जाए, ये प्रेम ऐसा बन जाए कि लोग दूर से कहने लगे, हाँ ये जन मसीह के लोग हैं, ये मसीह के भाई हैं, ये तो अद्भुत रीति से आपस में प्रेम करते हैं। संसार में तो बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन संसार के लोगों में कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे इस बात को बताता है कि हमको और आपको आपस में निस्वार्थ प्रेम करना है, और ये इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको एक नया जन्म दिया है। और जब यहां 23 पद में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। हमारा और आपका जन्म संसार के लोगों के समान नहीं हुआ है। एक रीति से हमने अपने माता पिता के द्वारा संसारिक रीति से जन्म पाया है, लेकिन जिस दिन हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस दिन हमारा आत्मिक जन्म हो गया। और ये ऐसे जन्म हुआ है कि कहता है कि परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन के द्वारा हुआ है। ये बात हमको और आपको अपने जीवन में गांठ बांध लेनी है कि जो हम और आप यहां पर कुछ लोग कलीसिया में लगभग 200 लोग बैठे हैं, परमेश्वर ने हमको और आपको नया जन्म दिया है और अपनी महिमा के लिए चुना है, और हमको इस बात को ध्यान रखना है। और कहते हैं कि ये आत्मिक बीज के द्वारा अर्थात परमेश्वर के जीवित और अस्थाई वचन के द्वारा हमारा और आपका जन्म हुआ है। लूका 8 अध्याय के 11 पद में अगर पढ़ते हैं तो कहता है कि बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा और आपका जन्म हुआ है, इसलिए हमको और आपको परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के जन से प्रेम करना है। क्योंकि ये जीवन हमको नहीं मालूम कब तक के हमको परमेश्वर ने दिया है। 24 पद पे कहता है, क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश हैं और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। जो कुछ संसार में हम देखते हैं, जितने भी प्राणी हैं, चाहे हम और आप हों, एक दिन हमारे और आपकी जीवन की दशा यही है जो यहां पर 24 पद में कहता है। लेकिन अगर हमेशा हमेशा के लिए अगर अटल है, हमेशा हमेशा के लिए अगर स्थिर है, तो वो क्या है? प्रभु का वचन है। और उस अटल वचन के द्वारा हमको और आपको परमेश्वर ने नया जन्म दिया है, और यही बात हमको और आपको आरंभ में समाचार सुनाया गया है। जैसे कि 25 पद में यहां पर कहता है, परंतु प्रभु का वचन युग युग स्थिर रहता है, और यही वह वचन है जिसका तुम्हें समाचार सुनाया गया था। याद करिए उस दिन को जब आप पहली बार कलीसिया में या किसी भाई ने आपको सुसमाचार सुनाया होगा। उस समय आपका प्रत्युत्तर जो भाई और आपको या बहन जो सुसमाचार सुना रही होगी उसके प्रति क्या रहा होगा? क्या आपने तुरंत मान लिया था कि हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ बहन जी, सब कुछ ठीक है, मैं सहमत हूं? बहुत से प्रश्न रहे होंगे, लेकिन ये प्रश्नों को जवाब अगर आपको मिला है, परमेश्वर ने अगर इस कदम में आपको बढ़ाया है, तो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को स्वीकार करने में मदद की है। यदि आपने वो सुसमाचार पर विश्वास ना किया होता, यदि परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में काम ना किया होता, तो शायद हम और आप यहां पर आज नहीं होते। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर है, और हमको और आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है कि वचन के द्वारा हम स्थिर किए गए हैं ताकि हम दूसरों से प्रेम करें। यही परमेश्वर की इच्छा है कि जो हम विश्वासी जन हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहें। और प्रेम किस प्रकार करना है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए खुद उदाहरण रखा, सब कुछ हमारे लिए आपके लिए क्रूस पे बलिदान कर दिया। जब हम अपने भाई बहनों से प्रेम की बात करते हैं, तो हम कितना दूसरों के लिए कुर्बान होने के लिए, या दूसरों के लिए खर्च होने के लिए, या दूसरों के लिए हम उपयोग होने के लिए तैयार रहते हैं। हमको और आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। प्रभु हम सबकी मदद करे कि ये वचन के आधार पे हम जीवन जी सकें, क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है। हमको नहीं मालूम कब प्रभु आ जाएंगे, लेकिन ये अवश्य है प्रभु आएंगे, विश्वासियों को ले जाएंगे, लेकिन जब तक हमको और आपको इस संसार में रखा है, एक बड़े कलीसियाई परिवार में रखा है, हमको और आपको एक दूसरे से प्रेम करते रहना है। और परमेश्वर का वचन बार बार यही याद दिलाता है कि तुम आपस में प्रेम करो, इसी से सब जानेंगे कि तुम मसीह के चेले हो। यदि हम आपस में प्रेम नहीं रखेंगे, यदि हम आपस में एक दूसरे से मेल से नहीं रखेंगे, तो संसार के लोग जैसे हैं वैसे हम भी, आप भी वैसे गिने जाएंगे। कैसे हम फर्क होंगे? प्रभु हमारी और आपकी मदद करें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें और एक दूसरे से प्रेम करें। दो अध्याय के एक पद से आगे देखते हैं, हर एक विश्वासी परमेश्वर के वचन एवं विश्वासियों से संगति के लिए ललाहित रहेगा। एक जो सच्चा विश्वासी है, एक जो प्रभु को अपना जीवन दे दिया है, उसके परिवार की, उसके जीवन की चाहे जैसी स्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर वो विश्वास करता है, अपना जीवन प्रभु के वचन के आधार पर प्रभु के हाथों में सौंप दिया है, तो वो कहीं भी रहे, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी हालत क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के वचन और विश्वासियों से संगति के लिए ललाहित रहेगा। लेकिन जब पत्रस यहां पर इस पत्र को लिखते हुए इन विश्वासियों को लिखते हैं, तो पद एक में लगभग 5 पाप हैं जिनके बारे में दिया गया है। कहता, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर। यहां पर ये पत्रस इन पापों के सूची देते हैं, और जब इनके बारे में हम ध्यान देते हैं तो ये बातें बड़ी आम हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं। ये मसीहों के बीच में सामान्य तौर पे अधिक रीति से पाई जाती हैं, लेकिन हम कई बार, मैं खुद नहीं सोच पाता हूं, लेकिन मैं भी कई बार इस पापों में सहभागी हो जाता हूं। लेकिन पत्रस कहते हैं, कैसे तुम एक दूसरे से प्रेम कर सकोगे, कैसे तुम एक दूसरे से मिलकर रह सकोगे, जब तक ये बातें हैं नहीं कर पाएंगे। इसलिए पत्रस कहते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक जीवन के लिए ललाहित रहो। पत्रस हजारों साल पहले ये तितर बितर लोगों को याद दिलाते हैं इस खंड को लिखने के द्वारा, और आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करता है। ये बातें हमारे हृदय में कई बार छिपी रहती हैं और हम आप इससे अनजान होते हैं, और ये पाप कई बार हम करते रहते हैं, लेकिन हम इन बातों का इनकार करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सब ठीक हूँ, अगर उसने ऐसा ना किया होता तो मैं ना करता। प्रिय भाई बहनों, कई बार हम चूकते हैं, मैं खुद कहता हूँ कई बार, लेकिन कई बार पापों को हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि इन बातों को दूर रखेंगे तभी हम प्रेम कर पाएंगे। इस कारण ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा से इन छुपे हुए पापों को प्रकट करने के लिए कहें, प्रभु हमारी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी मदद कीजिए, ताकि इन पापों से मैं छुटकारा पाकर आपके लिए जीवन जी सके। हमें से प्रत्येक भाई, प्रत्येक व्यक्ति ये पाप करते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के सामने इनका अंगीकार करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। पहला यूहन्ना 1:8-9 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। 2 पद में कहता है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललाहित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्यों पत्रस यहां पे नवजात शिशु के बारे में बोलते हैं? कौन है यहां पर जिनके घर में अगर बच्चा पैदा होता है, 2-4 दिन का रहता है, हम उनको दाल रोटी खिलाने लगते हैं? कौन है जो हम उसको अन्य कई चीजें, सब्जियां खिलाने लगते हैं? नहीं, छोटा बच्चा कि सिर्फ एक यही लालसा रहती है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दूध। प्रिय भाई बहनों, हमको और आपको एक नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललाहित रहना है। क्यों? जिससे कि हम उद्धार में बढ़ते जाएं। ये शुद्ध आत्मिक दूध है क्या? परमेश्वर का वचन। क्या हम और आप उस परमेश्वर के वचन के लिए ललाहित रहते हैं? पत्र से ये बात को याद दिलाना चाहते हैं। यद्यपि हमको नहीं मालूम ये तितर बितर के लोग रह रहे हैं, हो सकता है आपस में मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन पत्र से ये बात याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर के वचन की लालसा है, परमेश्वर के प्रति जो जिज्ञासा है, ये एक बच्चे के समान बढ़ती रहे और बनी रहे, तभी तुम उसमें दृढ़ और मजबूत बन पाओगे। एक बात बताइए, कौन है जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो घर से खूब पेट भर के खाना खा के जाते हैं? कोई है ऐसा कि हम जा रहे हैं पार्टी में, वहाँ खाना मिलने वाला बहुत अच्छा, लेकिन जाने लगते हैं तो हम घर से खूब पेट भर के खा के जाएं? कोई नहीं है। यदि आपका पेट खाना से भरा रहेगा तो क्या हमको और आपको कुछ वहाँ पर खाने का मन होगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा पेट बुराई से भर गया है तो हमें आत्मिक दूध की भूख नहीं लगेगी। इसलिए एक पद में कहते हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव छल निंदा को, पाखंड द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशु के समान आत्मिक दूध के लिए ललाहित रखो। जब हम संसार की उन बुराइयों से अलग रखेंगे अपने आप को, जब हम तमाम प्रकार की बुराइयों से अपने आप को अलग रखेंगे, तमाम प्रकार के उन ऐसे कपट से, तमाम प्रकार के उन बैर भाव से अपने आप को अलग रखेंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन के लिए हमारे और आपके अंदर भूख होगी। यदि हम मन में कड़वाहट रखेंगे, यदि हम मन में किसी के पास बैर रखेंगे, तो हमारा मन नहीं होगा कि हम परमेश्वर के वचन को खाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट भरा हुआ है तो हमें भूख है ही नहीं, तो हम कहां से खाएंगे? इसलिए हमको और आपको अपने पेट को खाली रखना है। जब हम भूखे होंगे तभी हमको खाना अच्छा लगेगा। और हमारा आत्मिक जीवन जब संसारिक तमाम बातों से खाली रहेगा तभी आत्मिक बातों में मन लगेगा। प्रभु हम सबकी सहायता करें, मेरी सहायता करें कि हम अपने आप को जांचें और अपने आप से इस बात कहें कि हाँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके वचन के लिए खाली रखना चाहता हूँ, कि जब भी मैं खाऊं आपके वचन को अच्छे से खा सकूं। पद 3 में, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब हम उसकी दया और उसकी भलाई और उसकी दूसरी आशीषों का स्वाद चखते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हमको पता ही नहीं होगा कि परमेश्वर की दया क्या है, परमेश्वर की भलाई क्या है, परमेश्वर की सच्चाई क्या है, क्योंकि वचन ही हमारे और आपके लिए बताता है, वचन ही हमको और आपको अगुवाई करता है। जैसे कि भजन 34:8 में लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परखो तो, खा कर तो देखो। अगर आपने गुड़ को नहीं खाया है तो कोई भी व्यक्ति कहेगा, भैया हम बाजार में गए थे, गुड़ खाया, गुड़ बहुत खट्टा होता है। तो आप अगर गुड़ नहीं खाए हैं तो मान लेंगे हाँ हो सकता है खट्टा होता होगा, लेकिन अगर आपने गुड़ को खाया है तो कोई कहेगा, भैया गुड़ बहुत खट्टा होता है, तो क्या कहेंगे? नहीं, गुड़ मीठा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। प्रभु हमारी और आपकी सहायता करे कि हम परमेश्वर की शरण में आ सकें, परमेश्वर की दया को प्राप्त कर सकें। पद 4 में तीसरी बात देखते हैं कि हर एक विश्वासी यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी सकता है। हर एक विश्वासी यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के ग्रहण योग्य जीवन जी सकता है। अब उस जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्यों ने ठुकरा दिया था, परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। अब उस पत्थर के पास आकर, ये कौन है पत्थर? यीशु मसीह। पत्रस कहते हैं उस पत्थर के पास आओ, वो चट्टान के पास आओ। पत्थर मजबूत है, चट्टान मजबूत है, परमेश्वर का वचन बताता कि यदि तुम अपना घर परमेश्वर मतलब चट्टान बनाओगे तो चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जितना भी बारिश हो वो घर स्थिर रहेगा। लेकिन यदि अपना घर तुम बालू पे बनाओगे तो आंधी आएगी, तूफान आएगी, जरा सी भी बाढ़ आएगी वो बह जाएगा। पत्रस कहते हैं कि उस जीवित पत्थर के पास आओ जिसे मनुष्यों ने तो ठुकरा दिया था परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। प्रिय भाई बहनों, जब संसार में यीशु मसीह थे मनुष्य के रूप में, लोगों को भी आज के समान लोगों को सुसमाचार सुनाया गया कि तुम यीशु पर विश्वास करो तो जीवन पाओगे, तुम यीशु पर विश्वास करो तो पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या, हमारे पास तो बहुत से लोग हैं जो हमारा मुक्ति कर सकते हैं, हमें यीशु की क्या जरूरत है। यीशु को लोगों ने ठुकराया, लेकिन कहता जिस पत्थर को मनुष्यों ने ठुकरा दिया था परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। तुम भी जीवित पत्थर के समान एक आत्मिक भवन बनते जाते हो जिससे पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण योग्य है। यीशु ने हमको और आपको चट्टान बनाया, दृढ़ किया है, मजबूत किया है, हमको और आपको बचाया है अपने प्राणों को क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा। क्यों किया? इसलिए किया कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा सकें। आप कहता पुरोहितों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। अब हम जीवित पत्थर के पास आकर जिसे मनुष्य ने ठुकरा दिया था परंतु जो परमेश्वर की दृष्टि में चुना हुआ और मूल्यवान है। हमको परमेश्वर ने जीवित पत्थर चट्टान बनाया, हमको परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया, हमको परमेश्वर ने पुरोहितों का एक पवित्र समाज बनाया। और जब ये बात देखते हैं पुरोहितों का समाज, पवित्र प्रजा, तो ये हमारे और आपके लिए आज के संदर्भ में बहुत कठिन था। अगर पुराने नियम को पढ़ेंगे तो ये कौन हुआ करते थे जिसको परमेश्वर ने, अगर पुराने नियम पढ़ेंगे इसराइली लोगों को, यहूदियों को परमेश्वर ने चुना था, वही वो एक समाज कहते थे, वो अपने आप में घमंड करते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमको और आपको वो मौका मिला कि हमको और आपको उसने क्या किया है, परमेश्वर की प्रजा बना लिया, पुरोहितों का पवित्र समाज बना लिया। हमने और आपने तो क्या किया था, पाप किया था, पाप की सजा हमको और आपको मौत मिलनी चाहिए थी, हम तो विनाश हो जाते क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप मेरे और आपके ऊपर बना हुआ था। लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम पर ऐसा अनुग्रह हुआ कि उसने हमको अपनी प्रजा बना लिया, अपना पवित्र समाज बना लिया। क्यों? ताकि हम उस परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा सकें। पौलुस भी रोमियो 12 अध्याय के 1 पद में अगर पढ़ेंगे तो पाते हैं वहां पे कि अतः हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर आग्रह करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र ग्रहण योग्य, परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हम कैसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा सकते हैं? क्या मेरा और आपका जीवन बहुत अच्छा है? नहीं। अगर हम और अपने आप को जांचें परमेश्वर के वचन में तो रोमियो 3:23 में लिखा है कि हम सब ने पाप किया था और पाप की सजा मौत थी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह में होकर के यीशु मसीह ने हम पर अनुग्रह किया कि हमको उसने बचा लिया, मेरे और आपकी जगह पे वो स्वयं बलिदान हो गया। अब हम उस परमेश्वर को यीशु के द्वारा, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं। परंतु याद रखें, यीशु को जानने या यीशु पर विश्वास से पहले की दशा हमारी और आपकी क्या थी? हम और आप दंड के लायक थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर, परमेश्वर ने अपनी दया में होकर हम पर अनुग्रह किया है। जैसे कि आपके सामने रोमियो 5 अध्याय को पढ़ा गया था, आपको ध्यान होगा यहाँ पे लिखा है इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर, रोमियो 5 अध्याय 1 पद से कुछ पदों को पढ़ रहा हूं, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। छह पद में, जब हम निर्बल ही थे ठीक समय पर मसीह भक्तहीनों के लिए मरा। दुर्लभ है कि किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। आठ पद में, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। दस पद में, क्योंकि जब हम शत्रु ही थे हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उसे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हो गया। ठीक समय यदि हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते, प्रभु अगर हमसे पूछता कि मैं अपने स्वर्ग में तुम्हें क्यों आने दूं, तो हम आप क्या कहेंगे? अरे प्रभु जी, मैंने समाज में इतना समाज के काम किया है, इतने लोगों को पढ़ाई मदद किया है, इतने लोगों को सड़क पार कराया है, इतने लोगों को मैंने ये सहायता प्रदान की है, इस कारण मुझे आने दीजिए। क्या प्रभु हमको और आपको इसलिए स्वर्ग में आने देगा? नहीं। हम तो क्या थे? परमेश्वर के शत्रु थे, हम तो पापी ही थे। याद करिए कि जब बॉर्डर पे भारत के सैनिक और खड़े होते हैं, क्या दूसरे देश के कुछ लोग उसमें घुस सकते हैं? नहीं, क्योंकि सैनिक अपने शत्रुओं का विरोध करने के लिए, सैनिक अपने देश की अपने बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए वहां तैनात होते हैं। लेकिन जब ये सोचिए कि हम जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं तो हम किसके समान हैं? एक शत्रु के समान है। अगर परमेश्वर हमको और आपको देखता है तो किस दृष्टि से देखता है? लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह की दया के द्वारा, यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा हमको और आपको उसने अपनी संतान बना लिया कि हम और आप परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएं, हम आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन जिएं। चौथी बात यहां पर देखते हैं, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया है ताकि उसके महान गुणों को प्रकट करें। पद 9 में पत्रस यहां पर मसीहों की एक वास्तविक स्थिति को वर्णित करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में है। वो क्या है? कहते, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकों का समाज, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर की निज संपत्ति हो, जिससे तुम उसके महान गुणों को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम एक दिन शत्रु थे, एक दिन हम परमेश्वर के वैरी थे, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमको परमेश्वर ने अपनी संतान बना लिया, हमको अपनी प्रजा बना लिया, हमको अपने याजकों का समाज बना लिया, हमको अपनी निजी संपत्ति बना लिया। अगर किसी की निजी संपत्ति कुछ अगर कहीं रख दिया है, घर के बाहर अगर मान लिया रख दिया है, घर इतनी बड़ी वो संपत्ति है कि आप घर के अंदर नहीं रख सकते हैं, बाहर रखी है, आप देख रहे हैं, अगर कोई आकर उठाने के लिए आता है तो क्या आप देखते रहेंगे कि हाँ ले जाओ भैया, नहीं उठा पा रहे हो तो हम भी आपकी मदद करते हैं उठवाने में? हम नहीं ले जाने देंगे। क्यों? हमारी वो संपत्ति है। विश्वासी लोग परमेश्वर की निजी संपत्ति हैं। और पत्रस इस बात को याद दिलाते हैं कि विश्वासियों की परमेश्वर की दृष्टि में क्या स्थिति है। तीतुस 2:14 में लिखा है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी निज प्रजा बना ले जो भले कार्य करने के लिए सरगर्म हो। हमको और आपको क्यों अपनी प्रजा बनाया है? क्यों एक चुना हुआ वंश बनाया है? क्यों निज संपत्ति बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। क्या है उसके गुण? परमेश्वर कैसा है? प्रेमी है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करते हैं। परमेश्वर दयालु है। जब हम एक दूसरे पर दया करते हैं तो उस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करते हैं, गुण को प्रकट करते हैं। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं तो हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। जब हम एक दूसरे के दुखों में सहभागी होते हैं तो हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए एक बड़ा कार्य किया है। लिखा है, जब हम भक्तिहीन थे, जब हम असहाय थे, जब हम अपने आप में कुछ कर ही नहीं सकते थे, तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे मर गया कि हम उसके प्रेम को, हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें जब तक कि संसार में हम और आप हैं। प्रेरितो काम 26 अध्याय के 17 और 18 पद में कहते हैं कि मैं तुझे तेरे लोगों से और गैर यहूदियों से भी जिनके पास तुझे भेज रहा हूं छुड़ाता रहूंगा कि तू उनकी आंखें खोल, जिससे कि वह अंधकार से ज्योति की ओर तथा शैतान के राज्य से परमेश्वर की ओर फिरें, जिससे कि वह पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ उत्तराधिकार प्राप्त करें जो मुझे विश्वास करने वालों के द्वारा पवित्र हुए, मुझ पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र हुए हैं। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, वो चाहता है कि संपूर्ण लोग उद्धार को प्राप्त करें। क्या हम और आप बहुत से ऐसे संसार में अंधकार में फंसे हुए लोग हैं, उनको इस बात को बताने के लिए कहते तैयार हैं कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे मारे गए हैं, क्या आप इस बात को जानना चाहते हैं? कई बार मौका मिलता है लेकिन हम इस मौके को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको और आपको अपनी प्रजा इसलिए बनाया है कि हम उसके महान गुणों को प्रकट कर सकें। हम उसके महान गुणों को कैसे प्रकट कर सकते हैं? उसके सुसमाचार को सुनाने के द्वारा, हम अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, हम कैसे, बहुत से हमारे पास तरीके हैं जो आप लिस्ट बनाने लगेंगे कम पड़ जाएगी लिस्ट। इफिसियों 5:18 में कहते हैं, पहले तुम अंधकार में थे परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। एक दिन हम और आप सब अंधकार में थे लेकिन परमेश्वर की दया हुई कि हमको, उसने आपको बचाया कि अपनी ज्योति की संतान बना लिया कि हम उस ज्योति की सदृश चलें। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य इस तरह हो जाए कि हमको लोग को जान सके देख करके कि हाँ, ये मसीह को मानने वाले हैं, मसीह को जानने वाले हैं। कुलुस्सियों 1:13-14 में कहता है, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। यदि आपको पापों की क्षमा प्राप्त हुई है तो आप नहीं चाहते हैं कि बहुत से आपके रिश्तेदार हैं, बहुत से मित्र हैं, बहुत से ऐसे आसपास के लोग हैं, वह भी पापों से क्षमा पाएं? एक दिन हमको और आपको अपने जीवन का लेखा देना होगा क्योंकि वो परमेश्वर जल्द ही इस दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहा है और वो कहेगा, तुम संसार में 40 साल 50 साल तक आपने जीवन बिताया, तुमने सब कुछ तो अपने लिए कह लिया, तुमने सुसमाचार सुन लिया लेकिन अपने जीवन को तो बचा लिया, लेकिन बहुत से ऐसे आपके पास लोग थे जिनको तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया। परमेश्वर ने हमको और आपको इसलिए बचाया है, इसलिए अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाया है, इसलिए अपने पुत्र के राज में प्रवेश कराया है कि हमारे पापों की क्षमा हो और साथ ही जो बात हमने और आपने सुनी है, जानी है, जिस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, इस बात को हम दूसरों को बताएं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे तो आप भी अपने पापों से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि बाइबल बताती है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। अगर आपको उद्धार पाना है तो यीशु मसीह के नाम पर ही विश्वास करना है, क्योंकि और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। संसार में सब लोग उद्धार पाना चाहते हैं, तमाम प्रकार के प्रयास करना चाहते हैं, तमाम ऐसे कामों करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य के सारे धर्म के काम मैले और चितले के समान हैं। हम चाहे जितना काम कर लें, चाहे जितना प्रयास कर लें, हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यदि हमको पापों से छुटकारा पाना है, यदि मुक्ति पाना है, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम पर विश्वास करना है। क्या हम ये बात बताने के लिए दूसरों को तैयार हैं? परमेश्वर ने हमको और आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए अपनी प्रजा बनाया है कि हम उस परमेश्वर के गुण को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर दें। 10 पद में कहता है, पहले हम अविश्वासी अनजाति लोग थे। याद करिए अपनी दशा को कि जिस दिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी और आपकी दशा क्या थी? हम भी संसार में असंख्य भीड़ में शामिल थे, हम भी परमेश्वर के प्रकोप के अधीन थे, हम भी परमेश्वर के शत्रु थे, हम भी परमेश्वर के बैरी थे। 10 पद में कहता है, एक समय तुम प्रजा ना थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, उस समय तुम पर दया ना हुई थी पर अब दया हुई है। जब हम पर और आप पर इस दया को हुई है, इस दया को हमने प्राप्त कर लिया है, तो क्यों नहीं हम बताएंगे? बताएंगे, हाँ भैया, हम एक दिन प्रभु को नहीं जानते थे, हम भी संसार में भटक रहे थे, हम भी मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे, हम भी शांति पाना चाहते थे, हमने बहुत कुछ किया लेकिन हमें शांति नहीं मिली, लेकिन जिस दिन यीशु को जान लिया मेरे दिल में शांति मिल गई। और हम और आप आज परमेश्वर की संतान हैं, प्रजा बन गए हैं, एक दिन नहीं थे। अगर इस बात को हम नहीं बताते हैं तो हम एक स्वार्थी मसीही हैं, कि परमेश्वर की दया का हमने स्वाद चख लिया, परमेश्वर की दया को हमने प्राप्त कर लिया, हमने अपने जीवन को बताओ बचा लिया, लेकिन बहुत से हमारे आसपास में भाई बहन हैं जिनके जीवन के बारे में हमारे आपके पास चिंता नहीं है। परमेश्वर ने हमको और आपको इसीलिए बचाया है, इसीलिए अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने पुत्र के राज में, ज्योति में, ज्योति की संतान बनाकर ठहराया कि हम ज्योति बनकर संसार में जिए। ज्योति क्या करती है? दूसरों को प्रकाश देती है। एक मसीही क्या दूसरे को अंधकार में जो रह रहे उसको प्रकाश में लाने के लिए कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कई बार हम ऐसे अरे जानने न पाए आसपास के लोग कि हम मसीही हैं, क्योंकि जिस दिन जान जाएंगे माहौल बड़ा गर्म है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको और आपको इसीलिए चुना है कि उसकी गवाही दें, उसका सुसमाचार सुनाएं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करने के लिए आया है, हमसे और आपसे पूछेगा कि मैंने तुम्हारे जीवन पर दया खाई, तुम तो इस लायक न थे लेकिन फिर भी तुमको मैंने बचाया, लेकिन तुमने, बहुत से ऐसे लोग जो तुम्हारे आसपास थे जिनको तुम बता सकते थे नहीं बताया, परंतु अब हम परमेश्वर के लोग बन गए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया हम पर हुई है, मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लिया है। जब रोमियो 9:26 पद में कहता है कि और ऐसा होगा कि जहां उनसे यह कहा था कि तुम मेरी प्रजा नहीं होगे, वही जीवित परमेश्वर की संतान कहलाओगे। एक दिन हम और आप परमेश्वर की संतान नहीं थे, एक दिन हम और आप परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, लेकिन आज हम और आप हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमको और आपको नया जन्म दिया है, परमेश्वर ने हम पर आप पर अनुग्रह किया है, इसलिए हमको और आपको अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है, इसलिए हमको और आपको परमेश्वर के लिए अपना जीवन जीना है। और यही बात पत्रस यहाँ पर इन तमाम तितर बितर लोगों विश्वासों कहते हैं कि कोई बात नहीं, सता हो रहा होने दो, लेकिन तुम विश्वास में दृढ़ रहो, तुम सुसमाचार काम करते रहो, एक दिन परमेश्वर आएगा जो तुम्हारे कामों को देख रहा है, वो न्याय करेगा। हमको और आपको ध्यान देना है कि हम कलीसिया में अपने प्रिय भाई बहनों से निष्कपट हृदय से प्रेम करें, हम कलीसिया में परमेश्वर के वचन एवं संगति के लिए ललाहित रहें, हम कलीसिया में परमेश्वर की सहायता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा ही ग्रहण योग्य जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर ने हमको अपनी प्रजा बनाया है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।